ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक नंबर 52। कथा वहां पहुंच चुकी है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति को पुंसवन व्रत में जो सावधानियां बरतनी है उसका उपदेश दे रहे हैं कि आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। श्लोक नंबर 50 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उन्होंने किसी का छुआ हुआ या किसी का जूठन प्रसाद, मतलब पवित्रता पर विशेष उन्होंने ध्यान देने को उपदेश दिया। आज के श्लोक में भी वही प्रसंग है, वही शुद्धता के और जो अंग हैं उनका वर्णन बता रहे हैं। तो हम लोग श्लोक उच्चारण करें, तत्पश्चात इस श्लोक के संदर्भ में कुछ कहने और सुनने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसे श्लोक नंबर 51 में तात्पर्य नहीं है, इसलिए श्लोक नंबर 52 लिखा गया है श्लोक के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। धौतवासा सुचिर नित्यं सर्वमंगल संजितं पूजयेत् प्रासरा सात्पात् गो विप्रान् श्रियम् अच्युतम्। धौतवासा सुचिर नित्यं सर्वमंगल संजिता पूजयेत् प्रातरा सात्पाक गो विप्रान् श्रियम् अच्युतम्। धौतवासा सुचिर नित्यं सर्वमंगल संजिता पूजयेत् प्रातरा सात्पाक गो विप्रान् श्रियम् अच्युतम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धौतवासा धूले हुए वस्त्र पहनकर, सुचिहि शुद्ध होकर, नित्यं सदैव सर्वमंगल समस्त शुभ सामग्रियों सहित, संयुता संजित होकर पूजयेत् पूजा करनी चाहिए। प्रातः आसात् प्राक कलेवा के पूर्व, गो विप्रान् गायों तथा ब्राह्मणों, श्रियं संपत्ति की देवी, अच्युतं श्री भगवान को। अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए, तत्पश्चात मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य को चाहिए कि धूला वस्त्र पहनकर, सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी चंदन और अन्य शुभ सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों ब्राह्मणों ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा श्री भगवान की पूजा करे। कृपा करके अनुवाद को एक बार मेरे पीछे बोलिए। मनुष्य को चाहिए कि धूला वस्त्र पहनकर, सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी चंदन और अन्य शुभ सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों, ब्राह्मणों, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा श्री भगवान की पूजा करें। हरे कृष्ण। धौतवासा सुनिर्नित्यं सर्वमंगल संयुता पूजयेत् प्रातरासात् पाक् गो विप्रान् श्रियमच्युतम्। अब कश्यप जी, दीति को किसकी पूजा करनी चाहिए उसका संकेत कर रहे हैं, क्योंकि पहले पूजा करने से पहले शरीर और कपड़े की सफाई पर विशेष ध्यान उन्होंने दिया। पहले शब्द में ही कहा कि धौतवासाम, क्योंकि हम लोग भी जब पूजा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो जिस अन्न से अरे जिस वस्त्र से अन्न ग्रहण कर लेते हैं वह वस्त्र अशुद्ध हो जाता है, उस वस्त्र को फिर पहन करके हम ठाकुर की अर्चना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां कश्यप जी दीति को यह बता रहे हैं पवित्र हो रहने के लिए कि कलेवा करने से पहले ऐसे वस्त्र धारण करके तब इन चारों की पूजा करनी चाहिए। इससे यह जाहिर होता है, इससे यह जानकारी मिलती है कि कुछ खा पी लेने के बाद आदमी के अंदर अशुद्धि आ जाती है, इसलिए खाने से पहले पूजा पाठ का विधि विधान है। गांव में बड़े बूढ़े लोग कहा भी करते हैं कि उठते उठते कौओं की तरह कांव कांव खाव खाव करने की क्या जरूरत है, अरे कुछ सूर्य को निकल आने दो, नहा धो लो, नित्य क्रिया शौच आदि से निवृत्त होकर के तब खाने पर जोड़ दो। एक नीतिकार ने नीति श्लोक में लिखा है कि 100 काम को छोड़कर के नहाना चाहिए और 1000 काम को छोड़कर के भजन करना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी भजन है, क्योंकि भजन करने के लिए जो पवित्रताएं बताई गई हैं, विधि विधान बताई गई हैं, उसमें सहायक है सफाई, जिसको कश्यप जी यहां दीति को बता रहे हैं कि निर्मल वस्त्र होना चाहिए। और सर्वमंगल संयुता का अर्थ यह है कि जब इस प्रकार के वातावरण से, इस प्रकार के शुद्धिकरण से अगर भक्ति करने के, पूजा करने के स्थिति में हम युक्त होते हैं तो हमारा कल्याण ही होगा, क्योंकि पूजा की विधि विधान यही है। हमारे गुरु महाराज एक जगह कथा में बताते हैं कि पुजारियों को तो इतनी सावधान रहनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, अर्थात जो पूजा करने लायक नहीं है, उससे पूजा जो कर रहा है पुजारी, उस परिस्थिति में किसी से स्पर्श न हो। मुझे पूरी तरह से याद है, मैं नैरोबी मंदिर में पुजारी था तो मेरे गुरु महाराज भागवत कथा कहने के लिए वहां गए थे। मैं ठाकुर जी को भोग लगा करके और महाराज कथा कह रहे थे, सामने जाकर के मैं बैठ गया। महाराज कथा के बीच में तो मुझे कुछ नहीं बोले, लेकिन कथा समाप्त होते ही महाराज ने कहा कि श्याम कृष्ण, अगर आप पूजा कर रहे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे, तो इस स्थिति में आपको इधर आने की जरूरत नहीं थी, अंदर अंदर ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे हमारे अंदर पवित्रता आए और भगवान हमारे द्वारा अर्पण किए हुए भोग को आनंद के साथ ग्रहण कर सके। क्योंकि दीती रूम से बाहर आने के बाद अन्य लोगों को देखने के बाद उनकी मानसिकता का प्रभाव पड़ता है और हमारा चित्त विक्षेपित होता है। इसलिए पुजारियों को खास करके एकाग्र चित्त रहने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए, एक स्थिति को बदलने के लिए कितने नियम बता रहे हैं कश्यप जी अपनी पत्नी को। इसके पीछे केवल उनका एक ही कारण है, एक ही उनका उद्देश्य है कि एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित, किसी तरह से अगर इतनी पवित्रता या वर्तन करेगी तो निश्चित रूप से जो इसके अंदर बदला लेने की भावना है वो मिट जाएगी। तो इस कथा से खास करके ग्रहणीय विषय यही है कि जो कुछ भी हम करना चाहें उसके पीछे एक ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, विचार करके वो कार्य करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होए या न होए, लेकिन विचार यह होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर प्रथम और दूसरे अध्याय में ही संस्तुति कर दी गई है व्यासदेव जी के द्वारा कि हम जो कुछ भी कार्य करें इस पर जरूर ध्यान रखें कि संसिद्धि हरितोषणम, हम जो कार्य कर रहे हैं इससे भगवान को संतुष्टि मिल रही है कि नहीं। तो इस श्लोक में भी यही जोर दिया जा रहा है कि पूजा हमें किसकी करनी चाहिए, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, क्योंकि इसके अंदर पूजयेत शब्द आया है। क्योंकि पूजा करना जरूरी है, मनुष्य जीवन की फलश्रुति भागवत के अंदर कई जगह कई श्लोकों में कई स्थानों पर इसका संकेत किया गया है कि मनुष्य जीवन तभी सफलीभूत होता है जब हम इस शरीर से काये मनसा और बपुसा, काये मतलब शरीर, बपुसा मीन्स वाणी और मनसा मतलब मन से, तीनों से हम भगवान की पूजा करें। और यह बताया भी गया है कि अगर तीनों की स्थिति अगर सही हो जाएगी तो हमें भगवत प्राप्ति करने में या हमें भगवत प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मन की स्थिति सही रहेगी तो शरीर की भी स्थिति सही रहेगी, और शरीर की स्थिति सही रहेगी तो हमारी वाणी भी सही निकलेगी। श्रीमद् भागवतम किसी भी ज्ञान को देने में सर्वसमर्थ है, इसीलिए सारी व्यवस्थाओं को पहले अध्याय के अंदर ही कह दिया गया है कि भगवान के शरण लो, केवल शरण लेने की प्रधानता बताई गई है कि चाहे जिस भाव से तुम आयो कहीं भी जाओ लेकिन एकमात्र भगवान की शरणागति की स्वीकृति लेने का प्रयास करो। तो यहां यह बताया जा रहा है कि किसकी पूजा करनी चाहिए, गाय की पूजा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अन्य संप्रदाय वाले भी या हमारे इस्कॉन वाले भी गो रक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं, तो इसका क्या कारण है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कहीं कहीं चित्र में कि भगवान श्री कृष्ण एक हाथ से गाय को आलिंगन करते हैं और एक हाथ से श्रीमती राधा रानी को स्पर्श किए हैं, आलिंगन किए हैं, तो भगवान यह संकेत करते हैं इससे कि जितना मैं प्रेम श्रीमती राधा रानी से करता हूं उतना ही प्रेम मैं गाय से करता हूं। क्योंकि सांकेतिक भाषा से ही भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि गाय सर्वत्र पूजनीय है और सांसारिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बच्चे का लालन पालन जिस प्रकार मां अपने दूध से करती है वैसे मां का स्थान गाय को भी प्राप्त है। चाणक्य पंडित ने लिखा है सात प्रकार की माताएं का वर्णन करते हैं तो उसमें गाय का भी पहला नाम आया है, गाय धाय, ब्राह्मण पत्नी, राजा पत्नी, अपनी मां, पृथ्वी, मतलब सात प्रकार की माताओं का गिनती उन्होंने किया है। उसमें पहला स्थान गाय का दिया क्योंकि खून से दूध बनता है। अपनी शरीर की आहुति देकर के गाय दूसरे की पालन करती है। एक नीति श्लोक में लिखा भी गया है कि फलंत वृक्षा ने, मतलब गाय परोपकाराय फलंत वृक्षा परोपकाराय दुहंत गावो, मतलब परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देता है और परोपकारम इदम शरीरम, और परोपकार करने के लिए यह शरीर मिला हुआ है। आप सोचो कि गाय दूसरी की भलाई के लिए शरीर धारण करती है और गाय की महिमा लिखते हुए अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि गाय की हमें क्यों पूजा करनी चाहिए। तो बताया गया है शास्त्रों में ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिखा हुआ है कि गवाम अधिष्ठात्री देवी गवा माद्या गवा प्रसू गवाम प्रधान सुरभि गो लोकेश समुद्र भवा। गांवों की अधिष्ठात्री देवी आदि जननी सर्वप्रधान सुरभि है और समुद्र मंथन के समय यह लक्ष्मी जी के साथ सुरभि गाय भी प्रकट हुई थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले जिसमें से इनका भी दोनों का स्थान है, सुरभि जी का और लक्ष्मी जी का। ये दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई। अन्य टीकाकार लोग बताते हैं कि भगवान का जो ससुराल है वो समुद्र है और लक्ष्मी जी का मायके समुद्र है। अब भविष्य पुराण से गाय की पवित्रता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गाय की श्रेष्ठता क्यों बताई जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पृष्ठे ब्रह्म गले विष्णु, ध्यान से सुनिए कि गाय के शरीर में किस किस अंग में कौन कौन देवता का वास होता है। कि पृष्ठे ब्रह्म गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठितः मध्ये देवगणा सर्वे रोम कूपे महर्षयः। इसमें बताया गया है कि गो माता के पृष्ठ प्रदेश में ब्रह्मा का वास है, गला देश में विष्णु का वास है और मुख में रुद्र का स्थान है। आप सोचिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की उपस्थिति इस गाय के अंदर बताई गई है और बीच में, बीच के अवयवों में समस्त देवताओं का वास है और रोम कूपों में महर्षि गणों का वास है और पूंछ में अनंत नाग, खुरों में चंद्रमा, खुरों में नदियां और नेत्रों में चंद्रमा तथा सूर्य का वास है। गाय के अंदर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अब सोचिए कि गाय के गला में भगवान विष्णु का वास है। शरीर के एक एक अंग में गाय का शरीर कितना महत्वपूर्ण है यह हम देख सकते हैं। और यही कारण था, हम लोग दशम स्कंद में पढ़ते हैं कि मां जसोदा जब भगवान श्री कृष्ण को वत्सपा बछड़े चराने के लिए भेजती है तो मां जसोदा कहती है कि बेटा जूते पहन लो। भगवान कहते हैं कि मां ये बछड़े जूते नहीं पहने, हम जूते नहीं पहनेंगे। क्योंकि भगवान को इसलिए कहा गया है कि वो गाय और ब्राह्मणों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं या इस पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उनको नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः प्रणाम करते हैं। इतनी पवित्रता है गायों के अंदर। प्रभुपाद जी एक जगह एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर गाय की रक्षा की जाए, गाय को आदर दिया जाए तो हमारी सभ्यता और संस्कृति का इतना विकास होगा कि आध्यात्मिक वातावरण अपने आप फैल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक वातावरण को दूषित करने का मुख्य कारण यही है कि आज गायों की सुरक्षा नहीं है। मैंने पढ़ा है एक जगह लिखा गया है कि जिस देश में या जिस परिवार में अगर पशुधन सुखी होते हैं, पशुधन सुखी होने का अर्थ है, भागवत में यह शब्द आया है कि ब्रजवासियों का असली धन गोधन था, तो कथाकार बताते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में या जिस प्रदेश में अगर गोधन सुखी है तो उसके परिवार में किसी प्रकार की कभी भी कैसी भी विपत्ति नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। इसलिए गाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां कश्यप जी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं दीति का। भागवत के अन्यत्र जगह भी ऐसा श्लोक आया है जिसमें चार लोगों की सेम लोगों की पूजा करने के लिए अनुमति दी गई है, गाय की, ब्राह्मण की और लक्ष्मी की और भगवान की। भगवान बुद्ध की वाणी है कि ये च खादति गोमांस मतु मन सेव खादयेत। जो गाय का मांस खाते हैं वे अपनी मां का मांस खाते हैं, यह भगवान बुद्ध की वाणी है। ये च खादति गोमांस मतु मंस खा रहे थे, इतनी जघन्य पाप है। और भागवत के पंचम स्कंद में 25 और 26 अध्याय में जो नरकों का वर्णन हुआ है उसके अंदर भी संकेत किया गया है कि जो गो मांस विशेष करके भक्षण करते हैं उनको वैसे खोलते हुए तेल में फ्राई करके और उनको खाया जाता है और उतने साल तक नहीं उतने करोड़ साल तक जितने गौ के शरीर में रोए हैं इतनी जघन्य बात। इसलिए अगर हम गाय को देख करके मात्र प्रणाम भी करते हैं तो सारे देवताओं को हम प्रणाम एक स्वर से कर लेते हैं, अर्थात भगवान को भी हम प्रणाम कर लेते हैं। तभी तो जब कोई भी पिशाचिनी डायनी या असुर भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श कर लेते थे तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर से भगवान को भी पवित्र किया जाता था। इतनी पवित्रता है गाय के अंदर। आज भी देखा जाता है वैदिक कर्मकांड के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर, कि अधिकतर पवित्रता लाने के लिए गाय के गोबर से घर को लेपा जाता है। और शादी में भी देखा जाता है कि विशेष करके गाय का गोबर का गौरी गणेश बनाया जाता है। इतनी पवित्रता है इसका। पहला तो उपाय बता दिए उन्होंने कि गाय की क्यों पूजा करनी चाहिए, और दूसरा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण क्यों पूजनीय है? तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ है कि वो केवल भगवत ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रयास करता है। ब्रह्मवादी, ब्रह्मवेदी, सत्यवेदी इत्यादि शब्दों से उनको संकेत किया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण का एक ही कर्तव्य है कि उसके पूजा करने के विधि विधान से एक ही आश्रय उसके जीवन का झलकता है, तो वह भगवान का प्रिय बनने के लिए नहीं बल्कि भगवान को खुश करने के लिए वो अपना कर्म समझ करके करता है। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि भगवान कभी ब्राह्मण की पूजा किए हैं? ब्राह्मण की पूजा भगवान ने कहीं किया है? और कहीं जब भगवत परीक्षा भगवान की परीक्षा लेने के लिए कौन गए थे? भगवान ने भृगु ब्राह्मण का पैर पकड़ लिए। जैसे ही उन्होंने उनके छाती के ऊपर पाद प्रहार किया तो भगवान ने उनका पैर पकड़ लिया कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा जो छाती है वो वज्र के समान कठोर है और आपका जो पैर का तलवा है अति सुकुमार है, कमल की तरह मुलायम है। आपके पैरों में चोट तो कहीं नहीं आया। पैर पकड़ करके भगवान कह रहे हैं इस वक्त। यहां इससे यह झलकता है भगवान की भगवत्ता कि भगवान ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं। और आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सुदामा जी का पाद प्रक्षालन करने के लिए पानी मंगाए थे कठौते में, लेकिन वो जल कठौते में ही रह गया। भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी का पद प्रक्षालन किया। इसलिए और कहा भी गया है भागवत के दूसरे या तीसरे स्कंद के अंदर कि जो ब्राह्मण है भगवान के मुख है, क्योंकि उनके मुख में केवल भगवत वाणी होती है, भगवान की वाणी होती है, इसलिए वो पूजनीय है, सर्वत्र पूजनीय है। इसीलिए तो वर्ण और आश्रम की स्थापना भगवान कर्म के आधार पर करते हैं। तो पहला जो वर्ण बनाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो पहला स्थान देते हैं ब्राह्मणों को, क्योंकि मुख्य प्रधानता है। और भागवत के 11वें स्कंद में भी ब्राह्मणों की महिमा भगवान बताते हैं, भक्तों की महिमा बताते हैं। 11वें स्कंद के अंदर 23वें अध्याय में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है, और भागवत के 10वें स्कंद में 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों की कथा आती है। ब्राह्मणों के ऊपर तो भगवान ने बाद में कृपा किया, पश्चाताप जब ब्राह्मण लोग किए तब, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने अपने ग्वाल बाल सखाओं को ब्राह्मणों जहां यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग वहां भेजा। केवल कृपा करना चाहते थे ब्राह्मण, क्योंकि वो यज्ञ करने में मस्त थे, धुआं पीने में मस्त थे। भगवान ने एक बहाना ढूंढा ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए, लेकिन उस कृपा के पात्र ब्राह्मण नहीं बने तो उनकी पत्नियां बनी। आप सोचिए, कोई न कोई किसी भक्त को पकड़ करके अपने धाम लाने के लिए भगवान भी बहाना ढूंढते हैं। उन्होंने साक्षात रूप से अपने सखाओं को भेजा, और जाकर के एक बार नहीं, तीन जगह तीन श्लोक में आया है कि भगवान के सखा लोग, ग्वाल वाल लोग भात मांगे हैं, भात मांगे हैं, भात मांगे हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ में मस्त थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब निराश होकर के वापस लौट करके भगवान के पास जाते हैं ग्वाल वाल लोग, तो भगवान हंसते हुए वाक्य कहते हैं ग्वाल वालों से, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रयास करने में एक न एक दिन सफलता मिल जाती है, इसलिए फिर दोबारा जाओ, दोबारा प्रयास करो, और अब की बार जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से मांगना। ब्राह्मण लोग तो धुएं पीने में मस्त हैं, उनको छोड़ो। इसलिए भगवान के कथनानुसार फिर दोबारा जाते हैं ग्वाल बाल लोग, और जैसे ही कहते हैं कि यहां से कुछ थोड़ी ही दूर पे कृष्ण और बलराम, राम और श्याम दोनों भाई आए हुए हैं, और वो भी भूखे हैं और हम भी भूखे हैं, और उन्होंने कुछ भोजन की याचना किया है, इसलिए हम लोग आपके पास आए। इससे पहले भगवान की भगवत्ता बताते हुए ग्वाल वाल लोग पहले ही उस अध्याय के शुरू में ही कहते हैं कि हे मेरे वीर शिरोमणि बलराम, हे मेरे प्रिय सखा श्याम सुंदर, हम लोग जानते हैं कि आपने बड़े बड़े असुरों का वध किया, लेकिन अब एक असुर का वध करने का और समय आ चुका है, अन्यथा वो असुर हम लोगों को वध कर देगा। तो वह असुर था ग्वाल वालों का भूख, वो याचना करते हैं भगवान से कि यह भूख रूपी जो यह असुर है अब हम लोगों का प्राण लेना चाहता है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि आप ही दोनों इसको पूरा करने में समर्थ हैं। कितना विश्वास है ग्वाल वालों को भगवान के ऊपर। तो भगवान भी अपने भक्तों के मन की बात को जानते हैं, वो भी उस प्रकार का ऐसा वातावरण और ऐसा बहाना बनाए कि ब्राह्मणों का भी उद्धार हो जाए और ब्राह्मण पत्नियों की भी महिमा और बढ़ जाए। भगवान के नजरों में ब्राह्मण लोग बहुत प्रिय है। उस अध्याय के अंदर ब्राह्मण लोगों का उद्गार है, जब ब्राह्मण पत्नियां थाल सजा करके भगवान के समक्ष जाती हैं और उनको सारी वस्तुएं अर्पण करती हैं और अपने आंखों से भगवान के स्वरूप को पीती हैं, वहां लिखा गया है, देखती ही रह जाती हैं भगवान के स्वरूप को। भगवान श्री कृष्ण वहां कहते हैं कि हे ब्राह्मण पत्नियां, आप लोगों ने जिस भाव से मेरी उपासना की, जो आपके मन में भावना थी, वो अब आपकी पूरी हुई और अब आप कृपा करके लौट करके अपने घर जाइए। ब्राह्मण पत्नियां वहां बहुत तर्क की हैं कि हे ब्राह्मण देव, हम लोग तो उस आशा से अपने पत्नियों का, अपने संबंधियों का तिरस्कार करके आई हैं, जो हमें नहीं आने दे रहे थे, उनका हम अपमान करके हम आप तक आए हैं और आपके पास आने के बाद फिर हमें आप भेज रहे हैं, तो हमें वो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण पत्नियां, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पहले से ज्यादा आदर देंगे, अब आपको पहले से ज्यादा मान मिलेगा, क्योंकि अब आप मेरी हो चुकी हो। भगवान का कहने का आशय था कि जो व्यक्ति हमारा बन जाता है, मेरा बन जाता है, उसको सारा संसार आदर देता है। इसलिए भगवान को अपना बनाने की प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण लोगों ने ही उद्गार दिया है उस अध्याय के अंदर कि जिसको, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके हित्वात अन्यान भजते यम श्रीपाद स्पर्श सया सकृत आत्मदोषा पवर्णे तद्यांचा जनमोहिनी, यहां ब्राह्मण लोग ही बता रहे हैं कि स्वयं लक्ष्मी जी की भी स्थिति बता रहे हैं कि स्वयं लक्ष्मी सब दोषों को छोड़कर, अपनी चंचलता और गर्व आदि को छोड़कर, केवल एक बार भगवान के चरण स्पर्श करने की कामना करती है। वे ही प्रभु किसी से अगर भोजन की याचना कर रहे हैं तो यह हम लोगों को मोहित करने के लिए नहीं है, तो और क्या है। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि जो भोजन मांगने की बहाना जो भगवान ढूंढ रहे हैं, वह केवल हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। लक्ष्मी जो सदा भगवान के पास रहती हैं, उनका पाद सेवन करती रहती हैं, वह लक्ष्मी भी इसी कामना से भगवान की सेवा करती रहती हैं लगातार कि एक बार भी अगर भगवान का चरण स्पर्श अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारा लक्ष्मी बनना सफल हो जाएगा। इतनी महत्ता है भगवान की पूजा करने की। और आज भी ब्रज के अंदर एक बेल वन है, बेल वन के अंदर आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। वहां भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या ही कर रही हैं अभी तक। यहां यह संकेत कर रहे हैं कश्यप जी की पूजनीय सेवनीय ग्रहणीय जो भी विषय हैं वो भगवान ही है। और इनका यह जो अथक प्रयास है जो व्रत करने के नियम को बताने में, उसके पीछे केवल यही मात्र कारण है कि जो रस कश्यप जी ले रहे हैं उसी रस को देने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक इस प्रकार की विचारधारा भगवान की है कि जैसे भगवान सच्चित आनंदमय स्वरूप हैं और सदा आनंद में रहते हैं, आनंद घनमूर्ति हैं, वैसे ही वो अपने भक्तों को ये आनंद देना चाहते। क्योंकि भागवत के नवम स्कंद में बताया गया है कि भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते और भक्त भी भगवान के बिना नहीं रह सकता है, और यह संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को पूजा करने पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। पूजा करने का अर्थ है उनका नाम, उनका रूप, उनका लीला और उनके भक्तों की संगति। अब प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य वे लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। इससे दो दिन पहले मैंने जो श्लोक नंबर 50 लिया था उस दिन मुझे खूब पश्चाताप हुआ कि प्रभुपाद के दो तीन लाइन जो तात्पर्य थे मैं इसको पढ़ा ही नहीं था, बोलने में ही भूल गए। बाद में मैं प्रभुपाद को आकर के प्रणाम किया और ये प्रभुपाद आप की कृपा से जो कुछ भी हम लोग बोल पाते हैं और आपकी वाणी को मैं दोहरा नहीं पाया। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रील प्रभुपाद महाराज की कि यदि किसी को गायों तथा ब्राह्मणों का सत्कार करने तथा पूजा करने की शिक्षा दे दी जाए तो वह सभ्य बन जाता है। अगर कोई सभ्य बनना चाहता है तो गाय की पूजा जरूर करे, गाय को प्रणाम जरूर करे, गाय के प्रति सौहार्द भाव जरूर रखे। और यह नहीं है कि गाय के प्रति ही सौहार्द रखे और जीवों से द्वेष रखे। कहने का तात्पर्य यह है कि गाय से विशेष प्रेम किया जा सकता है, उसको आदर दिया जा सकता है, क्योंकि वे हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। अब देख लीजिए भागवत का दशम स्कंद अगर गोवर्धन लीला पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताया गया कि स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख में गायों का आस्तन डायरेक्ट अपने मुख में रख करके एक साल तक दूध पिए। एक साल तक गाय भी वही बने थे, बछड़े भी वही बने थे और बछड़ा बन करके श्री कृष्ण ने स्वयं एक साल तक गायों का स्तनपान किया। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सारे गाय बछड़ों को चुरा लिया था तो स्वयं श्री कृष्ण सब कुछ विस्तार कर दिए थे, गाय भी बन गए थे, बछड़े भी बन गए थे, लकुटी लाठी वेशभूषा सारा कुछ बन गए थे, और बछड़ा बन करके स्वयं श्री कृष्ण ने एक साल तक गाय का स्तनपान किया। बताइए उस गायों में इतनी प्रेम क्यों नहीं आएगी, इतनी पालने की शक्ति क्यों नहीं आएगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर किसी को गाय और ब्राह्मण की पूजा करने के अगर अवसर मिल जाए तो वह सभ्य बन जाता है। इससे जाहिर होता है कि सभ्य बनने का पहला उपाय यही है कि गायों के प्रति सौहार्द रखनी चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। आज कहां यह शिक्षा दी जा रही है, भगवान राम स्वयं अपने आचरण से रामचरितमानस में सिखाते हैं, उठ करके सुबह सुबह माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और आज भी हमारे वैष्णव संप्रदाय में सिखाया जाता है कि सोने से पहले हम गुरु और भगवान को और सबको प्रणाम करके सोते हैं, और जगते ही हम फिर गुरु और भगवान को स्मरण करते हैं और पृथ्वी मां को प्रणाम करते हैं कि हम इस जगत में आए हैं। तो आपको प्रणाम करते हुए मेरी भावना यह है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। परमेश्वर के लिए कहा जाता है और भगवान को गायें तथा ब्राह्मण अत्यंत प्रिय हैं। प्रभुपाद जी श्लोक उद्धृत करते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ये भगवान आप केवल गाय और ब्राह्मणों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस सभ्यता में गायों तथा ब्राह्मणों का आदर नहीं होता उसे धिक्कार है। ब्राह्मणों का गुण प्राप्त किए बिना तथा गायों को सुरक्षा प्रदान किए बिना कोई आत्मसिद्ध नहीं बन सकता। गोरक्षा से प्रचुर दुग्ध सामग्री निश्चिंतता आती है और उन्नत सभ्यता के लिए यह परम आवश्यक है। गो मांस खाकर सभ्यता को दूषित नहीं करनी चाहिए। जब कोई सभ्यता अग्रसर होती है तभी वह आर्य सभ्यता कहलाती है। मांस के लिए गोवध न करके सभ्य मनुष्यों को उसके दूध से अनेक वस्तुएं बनाकर समाज की दशा सुधारनी चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करे तो वह कृष्ण भक्ति में दक्ष हो सकता है और कृष्ण भक्ति में दक्ष बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि जो गाय और ब्राह्मणों के लिए शरीर धारण करते हैं श्री कृष्ण, उनको खुश करने के लिए गायों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा की बुद्धि होनी चाहिए। अन्यथा हम भक्ति में दक्ष नहीं बन पाएंगे। और यह हम लोगों की वाक्य नहीं है, कश्यप जी शिक्षा दे रहे हैं। जिनसे दीति देवता असुर सब के सब जिनसे पैदा हुए उनकी यह शिक्षा। और स्वयं श्री कृष्ण भी इस बात को कहते हैं, नहीं गाय मुझे उतनी प्रिय है जितनी श्रीमती राधा जी। इसलिए एक हाथ गाय के ऊपर रखते हैं और एक हाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी को आलिंगन करते हैं। हरे कृष्ण। ये प्रश्न है अपने ही किए हुए कार्यों पर तो खैर यह अनुभव नहीं हो पाता कि मैं गलत कर रहा हूं ऐसा ही, लेकिन जिस कार्य को देखने वाले अच्छा कहें तो उसको मानना पड़ता है कि नहीं ये कुछ कर रहा है, लेकिन अनुभूति हो जाती है। हम लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल यह आता है कि गलत कार्य जाने या अनजाने हो जाने के बाद में पश्चाताप आता है, विचार जरूर आता है कि नहीं यह मैंने गलती कर दिया। भगवान ने उस पछतावा को भी अगर कोई गलत हो जाती है जाने अनजाने तो अगर उसके ऊपर अगर पश्चाताप करता है और फिर भगवान से अपने उस बिगड़ी हुई आदत को सुधारने का प्रयास करता है तो भगवान उस किए हुए गलत दोष को अपने ऊपर नहीं लेते, अब उस दोष को नहीं लेते। ऐसे तो यह बताया गया है कि भगवान किसी के दोष को देखते ही नहीं कि इसने गलती किया, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी भगवत्ता है। यह शास्त्र के अनुसार अकॉर्डिंग के हिसाब से विचार करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं शास्त्र अनुमति दिया है या नहीं दिया। बताइए जी महात्मा जी, गौर लीला में भी गाय की सुरक्षा के लिए महाप्रभु ने कुछ कहा है? कहीं कथा ऐसी आती है गौर लीला भी नहीं है, गौर लीला मैंने अभी तक पढ़ा नहीं जा तक। उन्होंने तो उधार किया है चांदिका जी का, लेकिन गाय का प्रसंग, गाय की उसमें वो बताए हैं कि मुस्लिम लोग जो है उनके अंदर जो दया की भावना है, गाय को काटते हैं इसलिए वो दया नाम की चीज उनके हृदय से निकल जाती है। वहां भी थोड़ा सा संकेत है, उनके मुसलमानों के स्वभाव का वर्णन किए हैं, वहां भी उन्होंने संकेत किया है कि गाय हमारी माँ है। उसमें भी बताए हैं प्यार में कई जगह कि नहीं, गाय हमारी माँ है और गाय को ही तुम लोग काट करके खाते हो, इसलिए तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब भगवान भगवत आवेश में आते हैं तब बताते हैं। हाँ वो तो गौर लीला में है। यह है कि अगर अनजान में कोई इस प्रकार की स्थिति में पड़ करके या संगति में पड़ करके अगर खा लेता है तो भगवान की यह अतिशय कृपा होती है उस जीव के ऊपर कि अगर वो कदाचित देखा जाता है कभी वो भगवत भक्ति में आ जाता है तो बिरले होते हैं। लेकिन यह भी पहले स्कंद के अंदर ही 18वें या 19वें अध्याय में जब उस प्रसंग में आया है, शायद इसमें नहीं है, पहले स्कंद में नहीं है, जब पृथ्वी मतलब जो गाय का रूप धारण करके मतलब जाती हैं और रक्षा करने के लिए बोलती हैं, तो उसमें यह आया है कि दया नाम की जो सबसे स्थिति है, अगर गाय की को अगर उस दृष्टि से नहीं देखता है तो उसके अंदर से वो दया नाम की वस्तु निकल जाती है। कभी इसमें यह बताया जाता है कि अगर कदाचित कोई किसी के जीवन में ऐसा आता है कि गो भक्षण के बाद भी भक्ति पथ में आ जाता है तो किसी किसी को देखा जाता है उसके और कुछ संतुलन में कुछ कम होंगे, जो पाप को ने पाप कम किया होगा, भक्ति के पथ को ज्यादा लिया होगा, कोई उसके संतुलन बढ़ जाने से वो आ जाता है संपर्क में। तो यह देखा जाता है कि गाय अपने आप में इतनी पवित्र है, अगर उसको दोष दृष्टि से अगर कोई देखता है, काटने के मारने के खाने के भाव से भी देखता है तो उसको मतलब अच्छी गति नहीं मिलती है, है। लेकिन कोई हतभागी जीव नहीं है जो इतने गर्हित कर्म करने के बाद भी अगर भगवत भक्ति में आ जाता है। और प्रभुपाद जी कितने बड़े कृपा किए ऐसे जीवों को, जो उनका नित्य नियमित नियम था ये चारों नियमों को तोड़ना, लेकिन उनके और किसी जन्म के ऐसे सुकर्म होंगे जिनके कारण प्रभुपाद ने ऐसी कृपा किया कि आज देखिए कि वही गो प्रोटेक्शन के लिए कितनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं अंग्रेज लोग ही कि नहीं ऐसे गाय की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे जितना भारतवासी भी उस सभ्यता पर जोड़ नहीं दे रहे, उनके सुकर्म है। और मूल बात है कि जिस पे भगवान और भक्त कृपा करना चाहें वही ऐसा कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की उपस्थित भक्त वृंद की गौर हरि प्रेमानंदे।